वैजारतना अनोखलिका कर यतन अमरना मुत्रफीहा। जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का इरादा करते हैं तो इसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं और वो इसमें नाफरमानियाँ करने लगते हैं। नोट कीजिएगा, कौन नाफरमानियाँ करते हैं? खुशहाल लोग जिनको बहुत मस्तियाँ आती हैं। वो कहते हैं क्या करें फिर, यू हैव ब्यूटी शो इट, यू हैव मनी शो इट, एक्सप्लोर कीजिए। वो कहते हैं हुसन दिखाओ, देखने की चीज़ है, अल्लाह ने पैदा किया, ये है वो है। तो अल्लाह ताला यहाँ इसी बात का इशारा करके कहते हैं कि दौलत तो बुरी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दौलत तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन दौलत के साथ कुछ जरासीम जिस्म में पड़ जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया वायरसेस आ जाते हैं और उसमें क्या है, फिस्क, नाफरमानी। और ऐसे लोग फिर गलत काम करते हैं तो उसमें नाफरमानियाँ करते हैं, तब अजाब का फैसला इस बस्ती पर चिस्पा हो जाता है और हम इसे बर्बाद करके रख देते हैं। देखिए, बड़ों का जो बिगाड़ है ना, वो पूरी कौम का बिगाड़ बन जाता है। जब चंद इन लीड्स बुरे काम करेंगे ना, तो दूसरे भी करेंगे। वो सोचते शायद हम भी इन लीड बन जाएंगे, हम भी बहुत मशहूर हो जाएंगे अगर हम इस तरह के काम करेंगे, गलत काम करेंगे। तो अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ यही बात करके कहते हैं कि तुम अपने आप पे गौर करो कि तुम किधर जा रहे हो। वकम अहलकना मिनल कुरूनि मिन बादी नूहिन। तारीख से सबक सिखाया जा रहा है, कोई तुम बड़े पहली दफ़ा नहीं हुए, कोई तुम नए जवान नहीं हुए, कोई तुम्हें आज दौलत अकेली फर्स्ट टाइम नहीं मिली। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कौमें गुजरी, देख लो कितनी ही नस्लें हैं जो नूह के बाद हमारे हुक्म से हलाक हुई। और तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों से खूब बाखबर और उनको खूब देखने वाला है। यानी किसी को बाय मिस्टेक नहीं पकड़ दिया गया। कभी कभी होता है ना, कोई गलती से ही कैद कर दिया जाता है, फिर कहते नहीं सॉरी, आपको हमने किसी और के धोखे में पकड़ा, आप तो ऐसे नहीं थे। बिल्कुल इसी तरह से याद रखिए, अल्लाह ताला के हाथ जिस कौम की भी आज तक पकड़ हुई, वो पूरे शऊर के साथ हुई, उनके गुनाहों के क्रेडिट के साथ हुई। मन काना युरीद अल आजिला तअज्जलना लहू फीहा मा नशा। और जो कोई आजिला का ख्वाहिशमंद हो, जल्द पाने का, आजिला या दुनिया को कहा गया, इसे यही हम दे देते हैं, जो कुछ भी जिसे देना चाहें, फिर इसकी किस्मत में जहन्नुम लिख देते हैं जिसे वो तापेगा मलामत सदा और रहमत से महरूम होकर। और जो आखरत का ख्वाहिशमंद हो, इसके लिए कोशिश भी करे जैसी कि इससे कोशिश करनी चाहिए, और हो वो मोमिन, तो ऐसे हर शख्स की सईये मशकूर होगी। इनको भी और उनको भी, दोनों फरीकों को हम दुनिया में सामान अजीज दिए जाते हैं। ये तेरे रब का दिया है और तेरे रब की अता को कोई रोकने वाला नहीं। बात सच है। यहाँ बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, ये आयतें भी इस बारे की आयतें तदब्बुर में शामिल हो सकती हैं कि आजिला, आजिला क्या है? जल्दबाजी, तारीकी से गुजरे बगैर रोशनी को तलब करना। लोग कहते हैं दुनिया नकद है, आखिरत उधार है, इसलिए इस दुनिया को मांग लो। अल्लाह सुबहाना ताला ने इधर इतनी शान बेनियाजी से कहा कि जैसे फ़कीर सदा लगाता है ना और उसको लोग दे के जान छुड़ाते हैं कि इसको जाने दो, इस तरह सिर्फ दुनिया मांगने वालों को हम निकाल के फेंक देते हैं। उठो निकलो भागो यहाँ से, तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हें किसी चीज़ की अगर कदर नहीं है तो तुम्हें वो मिलेगी नहीं। लेकिन आखरत सिर्फ तलब से नहीं, तीन चीज़ें अगर आपने तवज्जो से तर्जमा सुना है, सही और उतनी सही जितनी मतलूब है। खाना आधा पका के चूल्हा बंद कर दें तो खाना तो नहीं पकेगा, वो रोटी तो और पेट में दर्द करेगी जो आधी कच्ची हो। तो याद रखिए कि आखरत के लिए सिर्फ इरादा नहीं है, सही और हक उतना जितना कोशिश का हक है, और ईमान की शर्त हो, फिर अल्लाह कोशिशों को कबूल करेगा। आप और मैं खुद से पूछें, मेरा आपका क्या मामला है? क्या मैं और आप सिर्फ दुनिया को चाहते हैं? क्या हम कहते हैं अल्लाह बस दे दे, अभी दे दे, जो देना है अभी दे के ख़त्म करो, ख़त्म, बस मुझे इससे ज़्यादा नहीं है और नहीं चाहिए? क्या मैं और आप ये नहीं चाहते कि रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत व फ़िल आख़िरति हसनत, दुनिया भी दे, आखरत भी दे, आज भी दे, वहाँ भी दे। आप देखिए, कोई डॉक्टर बनता है तो क्या 2 दिन में बन जाता है? किसी भी डिग्री को पाने के लिए, जॉब करने के लिए मेहनत कोशिश की ज़रूरत होती है ना। कुछ भी दुनिया में आपको मिलता है, उसके लिए आपको पहले देखना पड़ता है कि आप उसको डिज़र्व करते हैं कि नहीं, फिर आप एक्सेप्ट करते हैं। आखिरत के भी स्टैंडर्ड्स हैं, अल्लाह ने वो कोई खेल में तो नहीं दे दिया ऐसे ही एक हंगामा बरपा। हम सोचते हैं नाउज़ बिल्ला बड़ा डिसऑर्गनाइज्ड किस्म का मैदान हशर होगा, पता ही नहीं चलेगा, हम आंखें चुकरा के देखना, हम भी दूसरों के ओट में हजूम में घुस जाएंगे जन्नत में। एक एक ज़र्रा लिखा हुआ है, एक एक नुक्ता लिखा हुआ है, एक एक आँख का इशारा, दिल की बात, आँखों की, कानों की, एक एक खयानत लिखी हुई है, उसके बाद वहाँ भेजा जाएगा। कैसे बचेंगे? मैंने अक्सर लोगों को सुना ना, जाना गाड़ी खड़ी करो, इनके कैमरे लगे होते हैं, तो उनके कैमरों का पता, अल्लाह के कैमरों का नहीं पता। हम तो बंद खिड़कियों से ना झांके क्योंकि घर में कोई नहीं, लेकिन कैमरा ना देख ले, कोई चोरी ना करे, कहते हैं यहाँ अभी सायरन बोल जाएंगे। तो आखिरत के लिए क्या सिर्फ इरादे किए हैं? बहुत सारे लोग इरादे को सोचते हैं, बस हमें बड़ी ख्वाहिश है। देखिए जुमला नोट करें, कुछ लोगों को सिर्फ आखरत की इन्फॉर्मेशंस हैं, दे हैव ओनली इन्फॉर्मेशंस, और इसी को वो सोचते हैं कि ये हमारी चाहत है, ये जन्नत है, जहन्नम आएगी, नेक नेक जन्नत में जाएंगे, बाद जहन्नम में जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशंस हैं। अल्लाह की कसम ये इन्फॉर्मेशंस हैं, अगर मेरा आपका अमल नहीं बदलता इस बात को जानने के बाद। ये फील करने वाली चीज़ है, ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है, इरादे, कोशिशें, भाग दौड़, और दुनिया में पता चलता है कौन जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। वल्लाही ये कोई राज नहीं है, आपको भी पता है आप किधर जा रही हैं, मुझे भी पता है मैं कहाँ जा रही हूँ। देखिए दुनिया में कोई काम होने वाला होता है तो उसकी खबर पहले से महसूस होनी शुरू हो जाती है। औरत प्रेग्नेंट होती है, क्या उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं? आपको कल पाकिस्तान जाना है, क्या आज आपके घर का माहौल बता रहा है पाकिस्तान जा रहे हैं? टिकट खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, पैकिंग की जाती है, ये कर लो वो कर लो, क्यों? क्योंकि जी हमें पाकिस्तान जाना है। हर काम की पहले से निशानियां नजर आनी शुरू होती, शादी वाले घर के माहौल से पता चल जाता है कि शादी होने वाली है, लग जाता है। लिखिए ये जुमला, इसी तरह आखरत या जन्नत पाने वाले की कोशिशें, उसकी भाग दौड़, उसके हांफने, उसके कामते, उसके अपने नफ्स पे काबू, उसका अपनी अना को तोड़ना, उसका मुश्किलों में भी नेकियों में जमे रहना, उसका मुश्किल हालात में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, ये बताता है कि सालहा सायहा, ये वो कोशिश कर रहा है। इसको पता है ये जन्नत कीमती बड़ी है। आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, 1,000 करोन उसकी कीमत है, आप 500 भी लेकर चले जाएंगे ना बाज़ार में तो नहीं मिलेगी, आप 600 भी ले जाएंगे तो नहीं मिलेगी, आप 850 भी ले जाएंगे नहीं मिलेगी, और यहाँ के सिस्टम्स जो बाहर के मुल्कों के देखे, आप 999 भी ले जाएंगे तो 1 करोन कम होगा तो आपको 1,000 की चीज़ नहीं मिलेगी। शायद मेरी आपकी ये थोड़ी बहुत ही कोशिश ही ना ज़ाया हो जाए, क्योंकि बुरी नहीं थी। अब क्या बनेगा, क्या बनेगा उस दिन? कितने रिलैक्स्ड हैं, आधे काम किए हुए से जन्नत मिलेगी, आधे नोट से जन्नत मिलती है। हम आधी नेकियां करते हैं, अधूरी नेकियां करते हैं, कभी शुरू किया कभी आखिर किया, और आधी आधी नेकियां लेकर जन्नत लेना चाहते हैं। आपको किसी जगह का कोई टिकट इशू किया जाता है, मिसाल है आपको एरोप्लेन का टिकट है आपके पास, और टिकट फट गया आधा, और आधा फटा भी ऐसी जगह से कि जहाँ से उसका नंबर ही छूट गया। अब आज तो इसके कई तरीके हो सकते हैं ना ढूंढने के, वो आपके फ़ोन से ढूंढ लेंगे, वो इधर से, लेकिन कोई भी मिसाल ले लें कि जहाँ कोई ई टिकट चलता ही नहीं है, जस्ट यू नीड टू शो देम हार्ड कॉपी, आधा टिकट ले जाएं और कहें कि मुझे जहाज़ में बैठा दें, बस मेरे नाम का आधा लफ्ज़ मिट गया या मेरा लास्ट नेम मिट गया, वैसे मैं हूँ वही, कोई मानेगा? तो क्या मेरी आपकी अधूरी बदूरी ये नामुमकिन सी नामुकम्मल सी कोशिशों से जन्नत मिल जाएगी? कहाँ जाएंगे हम, सोचिए। अब इसका ये नहीं मतलब कि जो कोशिशें कर रहे हैं वो भी छोड़ दें, कि अच्छा फिर तो मिलनी नहीं है तो छोड़ दें, तो जाएंगे किधर फिर? कोशिशें करते, टूटी फूटी कोशिशें करते, रोते धोते जाएंगे ना, अल्लाह को हमारी कोशिशों पे तो जन्नत हमें नहीं देगा, कि है ही नहीं उतनी, सी 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 बात है, लेकिन हमारे रोने धोने से दे देगा, हमारी तड़प से दे देगा। अल्लाह कहेगा इसको तड़प बड़ी थी। देखिए असल बात ये कि आप अल्लाह को दिखा दें कि आप अल्लाह के हैं, जब आप अल्लाह को अपना आप शो कर देते हैं ना, तो फिर अल्लाह को भी आप पे वही एतबार होता है जो आपको अपने नौकरों पर होता है। आपका कोई नौकर है, बहुत आपसे प्यार करता है या बहुत सिंसियर है, कभी उसे नुकसान हो जाता है, आप कहते नहीं कोई बात नहीं, ये बहुत सिंसियर है, ये धोखा नहीं दे सकता, हुआ होगा, वो रोएगा, आप कहेंगे चलो छोड़ो इट्स ओके, कोई बात नहीं और ले लेंगे। आप रोएं, आप धोएं कि अल्लाह मुझे अपना बना ले, फिर आपकी मेरी टूटी फूटी कोशिशों का भी फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज़ बहुत बड़े ख़तरों में हम, खुशफहमियाँ, गलत फहमियाँ, देखना ऐसा होगा। और लोगों ने हमें इतनी खूबसूरत तसल्लियाँ भी जो दी हैं कि बस ये वजीफ़ा कर लो जन्नत, ये पढ़ लो इतनी जन्नत, और ये करने के बाद एक दफ़ा ज़रा ये आयत करीमा पढ़ना ये जन्नत, शादी शुरू करने से पहले एक दर्स करा के, या चलो कुछ नहीं तो दुआ रखा लो जन्नत, एक मिलाद करा लो जन्नत, साल में एक कुरान खानी करा लो तो जन्नत। ये जन्नत अबू बकर को क्यों ना दिखी, उमर को क्यों ना दिखी, उस्मान को क्यों ना ये तरीका जन्नत का दिखा जो आज हम मुसलमानों को दिखा हुआ है? याद रखिए जन्नत के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं है, सीधा एंड स्ट्रेट वे टू जन्ना, आपको मुझे देखना पड़ेगा। सोचिए आज बैठ के मैं और आप, क्या वाकई जन्नत चाहिए? इमेजिन करें आपको कोई घर पसंद आ गया, देखते ही आपका दिल ललचाने लगा, मकसद ही बन गया ये घर लेना है, पैसे कोई नहीं, क्या करते हैं, ढूंढते हैं, कैश जमा करते हैं, घर में कोई सोना है उसको बेचते हैं, कोई प्लॉट है उसको बेचते हैं, कोई अपने प्यारे से किसी से कुछ उधार ले लेते हैं, इधर उधर से आना पाई जमा करके बिखरी चीज़ों को जमा करते हैं, तो फिर कहते हैं चलो एक घर ले लें। तो क्या तमन्नाओं और आरज़ुओं की जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी? अधूरी चीज़ों से, आधी कीमत से, आधी पेमेंट दे दें तो आपको तो चाबी नहीं देते, चाबी तो उस दिन मिलती है जिस दिन पेमेंट पूरी होती है। तो जन्नत ख्वाहिशों से नहीं मिलती, लिख लें जन्नत तमन्नाओं से नहीं मिलती और जन्नत दुआओं से भी नहीं मिलती। फिर तो सबको मिल जाती, तमन्ना सारे करते हैं, दुआएं भी बहुत सारे करते हैं, जन्नत मिलती है अमल से, कोशिशों से। साया, इस लफ्ज़ साई पे 3 सेकंड तक नज़र जमाएं और ख़ुद से पूछें कि मेरी क्या साई, मेरी क्या स्ट्रगल है जन्नत को पाने की। और सहाबा को जो बात समझ आई थी ना, वो अभी हमें नहीं आई। आप देखिए कि वक्त पड़ता है ना, तो इंसान अपनी कीमती चीज़ें भी दे देता है, कहता है क्या करें, अब इज़्ज़त तो बचानी है ना। एक बड़ी प्यारी रिवायत अबू ज़र से, कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी का हाथ थामा हुआ था, आपने फरमाया अबू ज़र अगर मुझे उहद पहाड़ जितना सोना चांदी भी मिल जाए तो मैं इसको भी अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा। हम होते कहते इसको बेच कर एक घर ले लेंगे, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आपने फरमाया कि मैं जिस दिन मरूँ मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक किरात भी मेरे पास हो और सारा का सारा मेरा इधर हो, मैं सब छोड़ के जाना चाहूँगा। यानी आप इमेजिन तो कीजिए किस तरीके से अल्लाह के नबी की प्रायोरिटीज़ थी और आज मेरी आपकी। हम कहते हैं बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जाओ, दुआ करेंगे, पैसे लेके दुआ करानी है आपने? मैं तो कहती कुछ ना छोड़ के जाएं। अल्लाह हमें उस दिन दुनिया से लेता है जब एक एक ज़र्रा ज़र्रा हम अल्लाह के रास्तों में दे चुके हों, हिसाब ही नहीं, जान छूटी, खाली हाथ सीधे वो फास्ट ट्रैक से गुजर जाओ। तो याद रखिए कि एक इंसान इस दुनिया में जो कोशिश करेगा उसका उसको वहाँ बदला होगा। अल्लाह ज़ाया नहीं करता, दुनिया ले तो बहुत दफ़ा हमारी नाकदरी करेंगे, अल्लाह नहीं करता। अल्लाह को पता है कि मैंने मेरे बंदे ने क्या कोशिश की, और हालात फ़र्क हैं, वाक़यात फ़र्क हैं, लेकिन कभी अपने आपको अंडर एस्टिमेट ना करें, कोशिश करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके मेरे लिए फिर उसको आसान भी कर देगा। हदीस तवील थी लेकिन खुलासा उसका यही था कि अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया की बजाय आखरत के इरादे कर लो। माइंड सेट चेंज होने लगता है, तबीयत बदल जाती है, प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं, इंसान के पहनने ओढ़ने का, खर्च का तरीका बदल जाता है, अपनी ज़ात पे लगाना बोझल लगता है, अल्लाह के रास्तों में देना आसान लगता है। अल्लाह ताला मुझे ऐसी ही हिर्स लगा दे, कोई अच्छी सी नीयत करते हैं अपने लिए कि जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमें सुरखरू कर दे। और आप देखिए अल्लाह ने कहा दिया ना कि अतान रब्बी का, तेरे रब की अता कैसी है, जब आपका रब देना चाहे, वमा का ना आता और रब्बी का महदूरा, रुकती नहीं है। अनलिमिटेड बैंक है अल्लाह का, दुनिया का हर बैंक लिमिटेड, अल्लाह का बैंक अनलिमिटेड है। आप मिसाल देखिए कि एक शख्स, उसके दो गोदाम थे ना, जल गए, दो लोग हैं उनके माल हैं, कहीं भी मनी कहीं उसने स्टोरेज में रखा हुआ है, एक का इंश्योर था दूसरे का इनसिक्योर था। अब ये इंश्योरेंस की बात नहीं मैं कर रही, बस आप समझ लीजिए कि एक किसी भी तरह से उसका नुकसान पूरा हो सकता है, दूसरे का नहीं। अब जिसने इंश्योरेंस कराई हुई थी ना, वो क्या कहता है, कहता है शुक्र इंश्योरेंस कराई हुई थी, देखो जो जला है ना वो सब वापस आ जाएगा, और जिसकी नहीं वो दूसरी तरफ है। अब ये दुनिया की इसकी लाइबिलिटीज इन सबको तो एक तरफ कर दीजिए, मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे रही फिलहाल, लेकिन अल्लाह के हाँ मोमिन का माल इंश्योर्ड होता है। छोटा सा नुकसान दुनिया में आपको मुझे मिलता है, फिर देखिए उसके बाद अल्लाह ताला मुझे आपको कितना कुछ देता है। और कहा उनजुर कई फफदलना बाद अलाबाद, मगर देख लो दुनिया ही में हमने एक गिरोह को दूसरे पर कैसी फजीलत दे रखी है, और आखिरत में उसके दर्जे और भी ज़्यादा होंगे और इसकी फजीलत और भी बढ़ चढ़ कर होगी। यानी दुनिया में भी अल्लाह ने जिस तरह माल दौलत कम और ज़्यादा दिया है ना, तो आखिरत के भी दर्जे हैं। कुछ को देख कर लोग रश करेंगे, हदीस में आता है जन्नतियों को देख कर यूँ लोग देखेंगे, जन्नत का एक दर्जा दूसरे वालों को कैसे देखेगा, जैसे हम ऊपर आसमान में सितारों को और चाँद को देखते हैं। उस दिन तो नहीं फिर हम कुछ ले सकते, सब इधर पे करना है, वहाँ कोई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती, जन्नत इज़ अ डिलीवरी होम, वहाँ कोई कैश क्रेडिट कुछ नहीं चलेगा। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इस दुनिया में कोशिश कर लो, बाकी रहेगी बात, किसी को दुनिया में ज़्यादा मिला किसी को कम मिला, रहने दो, अल्लाह की बात है। किसी को अल्लाह दुनिया की दौलत भी दे देता है और तकवा की दौलत भी देता है, तो क्या बुरी बात है? क्या सारे दीन वाले गरीब होने चाहिए? सारे मदरसे जो हैं वो टूटी हुई कुर्सियों से भरे होने चाहिए? सारी मस्जिदों की छतें लीक करनी चाहिए? नहीं, अतान रब्बी का, तेरे रब की अता है। दुआ कीजिए अल्लाह हमें दुनिया भी दे और आखरत भी दे, और जो दिया हुआ उसका हमें बेहतरीन इस्तेमाल करने वाला बना दे। 100 दर्जे हैं जन्नत के जिसकी तरफ हमें तड़पना है, भागना है। फरमाया ला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर, तो अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना, वरना मलामत सदा और बेयारो मददगार बैठा रह जाएगा। यानी ये है नुस्खा जन्नत की तरफ लगने का कि अल्लाह पे नज़रें लगा दो। जब मुझे आपको अल्लाह की बात समझ आ जाती है ना, फिर सारी बात समझ आने लगती है। फरमाया तुम लोग किसी की इबादत ना करो मगर सिर्फ उसकी, वबिलवालिदैनि एहसाना, ये है 10 कमांडमेंट्स, अहकाम अशरा। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि यहूद को जो अहकाम अशरा दिए गए वो मुसलमानों को इस बनी इसराइल में दिए गए, यानी उसका कुरानिक वर्जन है। इसको इकट्ठा पढ़ के मैं इस पर इकट्ठा ही डिस्कशन करूँगी, क्योंकि एक एक बात पे करने का मौका नहीं है, लेकिन हकीकत है कि ये आयतें सुनने के काबिल हैं कि इसमें किस तरह हकूकुल्ला से लेकर हकूकुल इबाद की डिस्क्रिप्शन बयान कर दी गई। क्या फरमाया? वबिल वालिदैनी एहसाना, वालदैन के साथ नेक सलूक करो। अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई एक या दोनों बूढ़े होकर रहें तो इन्हें उफ तक ना कहो, ना इन्हें झिड़क कर जवाब दो, बल्कि इनसे इख्तराम के साथ बात करो और नरमी और रहम के साथ इनके सामने झुक कर रहो और दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए परवरदिगार, इन पर रहम फरमा जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझको पाला था। तुम्हारा रब खूब जानता है क्या जो तुम्हारे नफ्सों में है। इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु काना लिलअव्वाबीन गफूरा, अगर तुम सालेह बनकर रहो तो वह ऐसे सब लोगों के लिए दरगुजर करने वाला है जो अपने कसूरों पर मुतनब्बे होकर बंदगी के रवैये की तरफ पलट आए। रिश्तेदार को इसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को इसका हक दो। फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च लोग शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। अगर इनसे यानी हाजतमंद रिश्तेदारों मिस्कीन और मुसाफिरों से तुम्हें कतराना हो और इस बिना पर कि अभी तुम अल्लाह की उस रहमत को जिसके तुम उम्मीदवार हो तलाश कर रहे हो, तो इनको नरम जवाब दो, यानी ताने ना दो कि हर वक्त ही मांगते रहते हैं। वला तजल यदक मखलूलतन इला उनुकिक, और अपना हाथ ना तो गर्दन से इतना बांध लो और ना बिल्कुल खुला छोड़ दो कि तुम मलामत ज़दा और आजिज़ बनकर रह जाओ। तेरा रब जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। इन्नहु कान बिइबादिही खबीरं बसीरा, और तेरा रब अपने बंदों के हाल से बाखबर है और इनको देख रहा है। अपनी औलाद को अफलास, अब ये सातवां हुक्म चल रहा है, तरतीब से जानते जाएंगे, देखिएगा 10 हुक्म पूरे बन जाएंगे। वला तक्तुलू औलादकुम खशयत इमलाक, अपनी औलाद को अफलास यानी भूख के और गुर्बत के अंदेशे से कत्ल ना करो। हम भी इनको रिस्क दे रहे हैं और तुमको भी हम रिस्क दे रहे हैं। इन्ना कत्लहुम काना खैतन कबीरा, दर हकीकत इनका कत्ल बड़ी खता है। और आठवां हुक्म, वला तकरबुल जिना इन्नहु काना फाखिशतन वसा सबीला, जिना के करीब न फटको, वो बहुत बुरा फेल है और बहुत बुरा रास्ता। और अगली बात, वला तकतुलु नफ्सल्लती हर्रम अल्लाहु इल्ला बिल हक, कत्ले नफ्स का इर्तकाब न करो जिसे अल्लाह ने हराम किया मगर हक के साथ। और जो शख्स मजलूमाना कत्ल किया गया हो, इसके वली को हमने कसास का मुतालबा करने का हक दिया है, हक अदा किया है, बस चाहिए कि वो कत्ल में हद से ना बढ़ जाए। कत्ल में हद से नहीं बढ़ना तो फिर और कब बढ़ना है? सोचिए ज्यादती कितनी बुरी चीज़ है। क्योंकि इन्नहु काना मंसूरा, इसकी मदद की जाएगी। फिर माले यतीम के पास न फटको मगर अहसन तरीके से, यहाँ तक कि वो अपने शबाब को पहुँच जाए। और अहद की पाबंदी करो, बेशक अहद के बारे में तुमको जवाबदही करनी होगी। और पैमाने से दो तो भर कर दो, और तोलो तो ठीक तोलो, और ये अच्छा तरीका है और इंजाम के अतबार से बेहतर भी है। और अगला हुक्म, वला तकफु मा लैसा लक बिही इल्मुन, किसी ऐसी चीज़ के पीछे न लगो जिसका तुम्हें इल्म ना हो, यानी सू ना लो, लोगों की तजस्सुस ना करो, लोगों की बातों को ना सुनते और सोचते रहो कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। यकीनन आँख कान और दिल सब की बाज़पुरस होगी। और ज़मीन में अकड़ कर ना चलो, ना तो तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो ना पहाड़ों की बुलंदी को पहुँच सकते हो, यानी बड़ा बनने से इज्तनाब करो। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहू इंदा रब्बिका मकरूहा, इन उमूर में से हर एक का एक बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। ये हैं वो हिकमत की बातें जो तेरे रब ने तुझ पर वही की हैं। शुरू भी शिर्क की बात से हुआ तो आखिरी बात क्या हुई? वला तजल मा अल्लाह इलाहन आखर, और अब अल्लाह के साथ किसी और को इलाह ना बनाओ वरना तुम जहन्नुम में डाल दिए जाओगे मलामत सदा और हर भलाई से महरूम होकर। कैसी अजीब बात है कि तुम्हारे रब ने तुम्हें तो बेटों से नवाजा, अपने लिए मलाइका को बेटियां बना लिया। बड़ी झूठी बात है जो तुम लोग जुबानों से निकालते हो। कितनी बातें थी टोटल? मैंने 10 कहा लेकिन 10 से ज़्यादा थी, अगर तो अलग अलग किया जाए तो 14 डिफरेंट थिंग थी। ये है वो नुस्खा जिसको आप कहें कि रेसिपी ऑफ अ सक्सेसफुल नेशन। मैं और आप अपनी उम्मत का दर्द लेकर यहाँ बैठते हैं, हमें हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि उम्मत मुस्लिमा अच्छे काम करे। ये सब जो आज मैंने आपने अभी पढ़ लिया है ना, ये करना पड़ेगा, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो उम्मत को शिर्क से निकालना पड़ेगा, उसके लिए वो सारे शिर्क के अड्डे गिराने पड़ेंगे, वो जगह कि जिधर लोग अपने आप को और अपने ईमान को ज़ाया करते हैं। आप देखिए कि जिस उम्मत में शिर्क होगा ना, वहाँ से नेकियाँ एक एक करके रुखसत होने लगेंगी। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला की बंदगी का हुक्म है, किस तरह से अल्लाह के बंदे बन के जिएंगे तो बात बनेगी। एक शख्स ने आपसे पूछा था कि सबसे अफसल अमल कौन सा है, तो आपने कहा कि तौहीद और अल्लाह के साथ शिर्क ना करना, ये सबसे बुनियादी अमल है कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना बनाओ। फिर इबादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यानी ये चीज़ें अपने वक्त पे अदा की जाएँ, रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो। फिर उसके बाद आप देखिए कि नमाज को वक्त पे पढ़ने के बाद जो अगली बात हमारे सामने आती है वो वालदैन की बात है। ये बेहतरीन मुकाम है कुरान का, जहाँ हम ज़रा अपने इस अमल को भी देख लें, क्योंकि इससे खूबसूरत आयतें मुझे पूरे कुरान में नहीं दिखती कि माँ बाप के हकूक़ की बात की जाए। अल्लाह ताला ने यहाँ माँ बाप के सामने उफ़ करने से रोका, बॉडी लैंग्वेज, उफ़, आपने तंग किया। आप देखिए आपके सामने चिराग जल रहा है ना, मोमबत्ती, और आपके उफ़, तो वो बुझ जाएगी। जिस तरह उफ़ से, उस मुंह की फूंक से चिराग या कैंडल बुझती है ना, इस तरह माँ बाप का दिल बुझ जाता है। जब इंसान कमज़ोर होता है ना तो बहुत इनसिक्योर फील करता है, उसको लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। उस वक्त औलाद का पाँव पटकना, उनके आगे कंधे उचकाना, उठाना, सर उठाना, भागना, ये माँ बाप को दुख देता है। अल्लाह ताला ये बात बता के मुझे आपको बताते हैं कि माँ बाप की खिदमत करो। किस तरह? एटीट्यूड के साथ, पाँव पटकते हुए, गुस्से के साथ, मुश्किल में डाल दिया आपकी, आपने मुझे ये कर दिया वो, नहीं, इस तरह माँ बाप की खिदमत करें कि आपने मुझे खिदमत का मौका देकर मुझ पर एहसान किया। एहसाना हक से ज़्यादा, इट्स माई ऑनर, आपने मुझे दिया, आपकी खिदमत मेरी इज्जत है। वरना याद रखिए, माँ बाप को छोड़कर सब कुछ मिल सकता है, इज्जत, शोहरत, स्टेटस, लोग आपकी तारीफें करेंगे, जन्नत नहीं मिलेगी। फिर यहाँ एक और बात देखिएगा कि माँ बाप के सामने बोलने का तरीका सिखाया जा रहा है। वला तनहर हुमा, डांटो नहीं, डांट डपट की जरूरत किधर पड़ती है? सीधी सी बात है, जिनकी तरबियत करनी होती है। या इंसान अपने बच्चों को डांटता है, यानी माँ बाप या बच्चों को डांटते हैं, या उस्ताद शागिर्दों को डांटते हैं, क्योंकि दोनों के ज़िम्मे तरबियत का काम है, तो माँ बाप की तरबियत नहीं है मेरे आपके ज़िम्मे। उनको जो बनना था बन गए, बूढ़ी हड्डियाँ ये नहीं मुड़ेंगी, ये टूट जाएंगी, ये झुकेंगी नहीं, ये आपके मेरे कहने पर बदलेंगे नहीं। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनकी आदतें बदल दें, इससे ज़्यादा नहीं। मैं आप माँ बाप की तरबियत नहीं कर सकते, ये नहीं वो नहीं, आप ऐसे हैं वो नहीं है, और चीखना चिल्लाना ये तो बड़ी बात है। इसके साथ तो इंसान अपनी नेकियों को ज़ाया करने वाला बनता है। बाज़ दफ़ा आप देखिए, औलाद को चार लफ्ज़ क्या पढ़ने आ जाते हैं, अपने माँ बाप को इस तरह वो जूती की नोक पे रखते हैं, आपको तो आता ही कुछ नहीं, आप तो ये हैं वो हैं। फिर आप देखिए बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप, और हम उनको ताने देते हैं, आपने मेरी अच्छी तरबियत ही नहीं की, आपने अच्छी जगह पढ़ाया ही नहीं है, आपने मेरी शादी अच्छी जगह नहीं की, आपने तो जान छुड़ा दी, आपने तो ये किया, आपने तो मुझे जहेज़ में ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं छोड़ दो, एहसान करो। और आपको तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बड़े खुश होते हैं वो क्या है? आपसे माल चाहिए उनको, उनके पास पहले ही बड़ा है, आपसे ज़्यादा माल है आपके माँ बाप के पास, चाहे जमा पड़ा हुआ है कहीं, यकीनी बात है। उनको आपसे वक्त चाहिए होता है, तवज्जो, प्यार, केयर। आप उनके पास बैठे हैं, उनसे बातें करें, अच्छा आपकी शादी हुई थी तो क्या था, अच्छा नानी माँ आप अपनी बचपन की बातें सुनाएं, अच्छा नाना वो आपको क्या कहकर बुलाते थे, फिर कभी आप उनके चेहरे के रंग देखें, उनसे उनकी बातें करें, वक्त दें। आज बच्चे सब कुछ दे सकते हैं लेकिन वक्त वक्त नहीं देते, तवज्जो नहीं दे, पैसे भेज देंगे खुद नहीं आते, तोहफे दे देंगे लेकिन खुद उनके कपड़े पहनाने और उतारने और उन चीज़ों का इंतज़ाम नहीं करते। तो आप उनको प्यार दें, उनके साथ अच्छा मामला करें, आप देखेंगे कि इससे उनका दिल खुश होगा, और वो दुआई देंगे आपको, इससे क्या होगा। और जब कभी लगे कि हक नहीं दे सके, तो रब इरहम हुमा कमा रबयानी सगीरा, हर कमी बेशी का अजाला इस दुआ में। एक साहबी ने कहा कि मेरे माँ या बाप को इस किसी दोनों में से एक का पूछा कि नाराज़गी की हालत में फौत हो गए, मेरे से नाराज़ थे, मुझे इतनी समझ नहीं थी, आज मुझे एहसास होता है कि मुझे मेरे से वो नाराज़ थे, तो मैं क्या करूँ, का रब इरहम हुमा पढ़ा करो। फिर इसमें आपने उन नेक औलादों का भी तस्करा सुन लिया इस तर्जुमे में। बस दफ़ा माँ बाप खुश ही नहीं होते, पूरी कोशिश कर लें, आप संजीदा हैं, सीरियस हैं, सिंसियर हैं, उनका दिल ही नहीं जिमता, वो आपसे और ही चाहते हैं। अब आपके अपने कुछ तकाजे हैं, कुछ ज़िंदगी के कोई मामले, लेकिन माँ बाप हमेशा उससे ज़्यादा चाहते हैं, और आप कर नहीं पाते तो फिर गिल्ट होता है। जो औलादें नेक होती हैं ना, उनको फिर गम होता है कि अच्छा फिर हम अपने माँ बाप की वजह से पकड़े जाएंगे। कहा नहीं, डोंट वरी, इन तकून सालेहीन, आपके पीछे सामने आयत गुजरी है, नेक हो अल्लाह उनको खुश कर देगा, तुम अपनी सी कोशिश करते रहो। तो देखिए, माँ बाप के लिए गलत बात नहीं माननी। बाद जब माँ बाप गलत बात का मुतालबा करते हैं, फिर आप ना माने, कहते हैं अब तू जा आग में, तू कुरान पढ़े पढ़ाएगी और आग में जाएगी क्योंकि तूने माँ की नहीं मानी। नहीं, माँ की वो माननी है जो अल्लाह के हुक्म के अंदर है। खामोश रहे, आगे से कंधे ना उचकाएं, कुछ ना कहें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इससे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला उनका दिल आपसे जोड़ देगा। और पिछली ज़िंदगी में अगर कभी भी कुछ हुआ हो, माफ़ी मांग लें, अच्छे तरीके से बात कर लें, अल्लाह ताला आसान कर देगा। माँ बाप को बर्दाश्त नहीं करना, उनको सर्व करना है। देखिए ये तोहफे हमेशा नहीं रहते, ये दुआओं की पोटलियाँ होती हैं। ये जो दुआएं देते हैं ना, ये दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता, वल्ला ही नहीं दे सकता। मैंने देखा है कि उधर से आपको माँ बाप दुआएं देते हैं, और जो दूसरी तरफ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, गलत भी हो सकता है, हर एक के पास नहीं, और दूसरी तरफ जो मैंने दुआएं देखी हैं वो शागिर्द देते हैं दिन रात, जो लोगों की दुआएं और जो उनकी अच्छी विशेज़ मिलती हैं ना, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सर सजदे से ऊपर करूं। हालांकि क्या हम पढ़ाते हैं, ना हम कोई मेहनत करते हैं, ना हम कोई वक्त लगाते हैं, ना हमारे अंदर वो कोई जज्बे, ना हमें पढ़ाना आता, लेकिन वो कहते नहीं जो हमें मिला है वो। तो मैं ये सोचती हूँ कि एक तरफ माँ बाप की दुआएं, औलाद भी उस तरह दुआ नहीं देती सच माने। वो कहते हैं इन्होंने पहले बड़ी नेकियां की हुई, अब हम इनके साथ क्या मामला करें। तो हमेशा अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे इस मामले में सुरखरू कर दे। हत्ता कि आपको बताएं कि ऐसे ऐसे मामलात के जिसमें माँ बाप को आपकी ज़रूरत हो तो जिहाद तक में जाने से रोक दिया गया। ये सब चीज़ें समझने के मुताबिक हैं, अक्ल के मुताबिक। इसमें कई लोगों के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन इस पर एक टॉपिक भी है, माँ बाप मेरी जन्नत या जहन्नम। इस तरह माँ की दुआ जन्नत की हवा, ये तो मेरे लिए रिसेप्शन पे भी दावा सीरीज़ में रखी होती है सीडी। लेकिन आप कोशिश करें अपना ताल्लुक बेहतर करने की, और साथ साथ फिर आप देखें जब आप अल्लाह अपने माँ बाप के साथ अच्छे होंगे, आपकी औलादें खुद ब खुद आपके लिए अच्छी होंगी। ये पलट के आती है, हदीस में आता है कि वो गुनाह जिस पर अल्लाह आखिरत का इंतज़ार नहीं करता उसमें से एक अकूकुल वालिदैन है। अकूक क्या है? जैसे हकूक है, नाफरमानी। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा उसको दुनिया में अल्लाह एड़ियाँ रगड़ के मरवाएगा। ये अल्लाह की शान है। अगर वो नेक है और वाकई उस बच्चे ने जन्नत में जाना है ना, वो तड़प तड़प के मरेगा, बीमारियाँ लग जाएंगी, कोई औलाद का सदमा पड़ जाएगा, यानी अल्लाह उसको किसी न किसी तरह से पाक करना चाहता है। फिर आप कहते हैं कि माँ बाप के लिए बचता कोई नहीं, तो अगली आयतों में अल्लाह ने कहा कि फजूल खर्चियाँ छोड़ो। एक शख्स ने पूछा किसी आलिम से कि मेरे पास पैसे थोड़े हैं, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, तो माँ अपने बच्चे बीवी को देकर कुछ इतना नहीं बचता कि माँ बाप को दूँ, क्या करूँ? कहने लगे बेटे आपकी सवाल ये होना चाहिए था कि मेरी इनकम बहुत थोड़ी है, माँ बाप को देकर इतना नहीं बचता कि बीवी बच्चों पे लगाऊँ, तो मैं क्या करूँ? माँ बाप को आप लेफ्ट ओवर चीज़ में देंगे, लेकिन हकीकत है कि माँ बाप को हमसे इतना नहीं चाहिए होता, तो फजूल खर्ची से भी बचना है। इस्लाम में आसाइश की भी इजाज़त है, आराइश भी आप कर सकते हैं, नुमाइश नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तबकाती तकसीम शुरू हो जाती है, क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है, डिफरेंट लेवल्स बन जाते हैं। आप कहते हैं कि आज के नौकर तबजीर की वजह से इंतकाम की आग में भड़क रहे हैं, कई मुलाजिम जो है वो अपने घर वालों को कत्ल कर देते हैं कि हमें 100 रुपया भी नहीं देते, हमारी एक छुट्टी होती है तो तनख्वाह काटते हैं, खुद हज़ारों का जोड़ा पहनते हैं, हज़ारों के जेवरात पहनते हैं। तो ये जो इसमें अगली बातों में अगर देखें तो इसमें भी थोड़ा सा हमें गौर करने की ज़रूरत है कि तबजीर को भी अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। अपनी ज़ात पर खर्च करते हुए 10 दफ़ा सोचें, ताकि फिर आपको दूसरों को, रिश्तेदारों को और उनको देने का वक्त भी मिले और उनको देना आसान हो। फिर आप देखिए इसमें कमिटमेंट्स की बात है, पूरी अहकाम है, आप इस पर बाद में गौर करिएगा, इंशाल्लाह आपको एक बड़ा खूबसूरत एजेंडा मिलेगा। और अगर चाहें तो इन सारे 14 अहकाम को लिख के कहीं भी घर में खूबसूरत तरीके से लगा लें, कोई बुक मार्क बना लें, कोई वॉल हैंग बना लें, आपको और बच्चों को फ़ायदा होगा। फिर इसमें देखिए बच्चों के अबॉर्शन की बात हुई, पीछे भी बात हुई थी, किसी से जीने का हक छीनना ये बहुत बड़ी जरूरत है, अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा कर रखे। और जिना की बात जब आई, ला तकरबु जिना, तो इस पर भी चंद बातों की ज़रूरत है। हदीस में आता है कि जब जिना करता है एक इंसान तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, यानी ईमान की मौजूदगी में कोई जिना नहीं होता। और जिना सबको पता है क्या होता है, हदीस में आता है कि इसके ऊपर छतरी की तरह होता है, फिर जब वो इस बुरे फेल से पलट आता है तो ईमान वापस आता है, यानी अगर खुदा न खास्ते इस हाल में कोई मर जाए तो वो कुफर की मौत मरेगा, कोई जलजला आ गया, कोई हार्ट अटैक हो गया, तो बेईमान मर गया। जिना से बीमारियां भी फैलती हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी उम्मत में जब बदअमली या जब किसी कौम में बेअमली या बदकारी आम होती है तो वहाँ अल्लाह ताला ताउन और पेट की बीमारियां पैदा कर देता है। आज नित नई बीमारियां देखिए, चले वो तो बड़ा जिना है ना, यहाँ तो ला तकरबु जिना इसको भी समझिए, हर वो दरवाज़ा जो जिना की तरफ बुलाए। इस पे हमेशा मैं एक ही हदीस सुना देती हूँ, उसमें सब कुछ आता है, मैं हदीस पढ़ के सुनाना चाहूँगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इब्ने आदम पर इसके जिना का हिस्सा लिख दिया जाता है, वो ला मुहल्ला इसे पाएगा, यानी ज़रूर उस जिना की सज़ा को भुगतेगा, कैसे? बस आंखों का देखना जिना है, यानी गैर महरम को शहवत से देखना। एक है लिटरल देखना, वो मना नहीं है, वो आगे सूरत नूर में आएंगे आयते हैं। क्या आप किसी को देख ही नहीं रहा, बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आगे को मर्द आगे, ये मुराद नहीं है। शहवत से देखना, खूबसूरती से। आप देखिए, आप तस्वीरें देख लें, आप मीडिया से देख लें, आप सामने बिठा के किसी लड़के को देख लें, यह आपकी मर्जी है। ये का आंखों का जिना है। फिर इसका जिन कानों का जिना सुनना है। मोहब्बत भरी बातें, आई लव यू, यू लव म्यूज़िक, फुहश बातें, टेलीफोन की बातें, रॉन्ग नंबर मिलाओ बातें करो, सारी सारी रात बातें करते जाएं, अब तो फ्री पैकेजेस आ गए। ये कानों का जिना है। और हाथों का जिना पकड़ना है, टच करना, छूना। मोहब्बत में जज्बात पे काबू ना रहा, हाथ थाम लिया। और पाँव का जिना चलना है, डेटिंग, किसी मर्द से तन्हाई के लिए मिलना जाना, फिर बात करना, ये सब जिना है। फरमाइए, ये सब कुछ जब होता है, फिर दिल का जिना ख्वाहिश और तमन्ना करना है। फिर ये जो उठते हैं ना, जिसको आप प्यार कहते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो जिना की एक अगली कड़ी होती है कि दिल में फिर दिल तमन्नाएं डालता है आई लव यू को। और बाज़ दफ़ा इंसान आंखें, कान, हाथ सब कुछ बंद कर करा के रहता है, तो उसके दिल में से ये जज्बे जाते हैं। आप देखिए, सारी खिड़कियाँ बंद हो, दरवाजे बंद हो, तो मट्टी नहीं आएगी ना। तो ये जज्बे आते ही तब है जब ये चीज़ें आम होगी। और अल्लाह माफ़ करे, आज के दौर में तो गैजेट हमारे हाथों में है, जो इन इन चीज़ों को हमारे सामने करते हैं। तो दुआ मांगा करें कि अल्लाहुम्मा अक्फिनी बि हलालिका अन हरामिका वाग़निनी बि फ़ज़लिका मन सिवाक, कि अल्लाह मुझे अपने हलाल से किफ़ायत दे, मैं हराम की तरफ देखूँ भी ना। शादी हो चुकी है, अपने शौहर से ज़्यादा दूसरों में दिलचस्पी है, इस पे तौबा कीजिए। अपनी बीवी से ज़्यादा दूसरे की बीवी अच्छी लगती है? नहीं। वाग़निनी बि फ़ज़लिका मन सिवाक, इसके सिवा जो चीज़ें मुझे उससे दूर कर दे। आज इस चीज़ ने वाकई इंसान को बहुत पीछे किया। और आप तरतीब नोट करेंगे ना, जिना, जिना के बाद कत्ल, जहाँ जिना होगा वहाँ कत्ल होगा। या तो उस बच्चे को किल करते हैं, अपनी ख्वाहिश पूरी करने के नाम पे ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे कि बच्चा ही ना हो, और बच्चा हो गया, अब इस बच्चे को कौन पालेगा, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और इसी तरह से दूसरी तरफ बातें करते कराते, बाज़ दफ़ा वो लड़का लड़की को ही कत्ल कर देता है, कभी लड़की के भाई उस लड़के को कत्ल कर देते हैं। तो कत्ल और जिना साथ साथ चलता है। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे।